ओम शांति। अधिकतर हम सभी जो संडे की अव्यक्त मुरली होती है, साकार मुरली पर भी मनन चिंतन करते हैं रोज, और किंतु जो अव्यक्त मुरली होती है उस पर बहुत गहराई होती है, उसमें बहुत बहुत गहराई होती है। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में बताया था कि बाबा के जो महावाक्य हैं, मुरली माना बाबा के महावाक्य हैं, परम सत्य शिव बाबा परम सत्य है, उसका एक एक जो महावाक्य है उसके एक एक महावाक्य में बहुत ही गुह्यता है, माना बहुत गहराई है। खाली वो लाइन ऐसे नहीं है, उसमें बहुत गहराई है, उसमें कई राज समाये हुए हैं, माना कई सारे सीक्रेट्स हैं जो अभी अभी हमें नहीं दिखाई दे रहे, किंतु भविष्य में आने में भविष्य में वो दिखाई देंगे, हमारे सामने आंखों के सामने प्रत्यक्ष होंगे। और कई रहस्य हैं, कई सस्पेंस भी हैं, कई सस्पेंस हैं, और कई ऐसी बात है जो महीन है, बहुत ही महीन है, मतलब आपको दिखाई ऐसे नहीं पढ़ने से समझ नहीं आएंगी। जब उसको आप 10 बार 20 बार 30 बार 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 पढ़ेंगे और ये करेंगे, बाबा मुझे ऐसा ही बनना है, बाबा मुझे जैसे आपने कहा ना, मुझे ऐसा बनना ही है, कैसे भी करके बनना ही है, जब ऐसा बार बार करेंगे तो उसका महीनता समझ में आएगी। सूक्ष्म है, सूक्ष्म माना हमको सूक्ष्म बना देने वाले, सूक्ष्म माना पवित्र बना देने वाले हैं। बाबा का हर महावाक्य हमको सूक्ष्म महीन माना महान बना देने वाला है। महान का मतलब क्या है? 108 की माला, 108 की माला में लाने के लायक बना देने वाला है। तो महीन जो महीन में जिसकी महीनता में जाएगा वो महान बनेगा। और सूक्ष्म माना वो इतने सूक्ष्म है, मोटी बुद्धि समझ नहीं आएंगे, जितनी पवित्र बुद्धि होती जाएगी हमारी उतना अधिक हमारी बुद्धि और मन को पवित्र बना के हमें फरिश्ता बनाता जाएगा। और अमूल्य है, अमूल्य माना ऐसी चीज ऐसी जिसकी मतलब बाबा कहते लाखों लाखों रुपया कीमत है, उसमें बाबा लाखों रुपया कहते थे 1969 तक, अभी तो लाख कितने हो गए, वो लाख कितने हो गए, अभी तो करोड़ों हो गए, अरबों हो गए ना। तो बाबा जो एक एक महावाक्य है वो जीवन में आपके सामने समस्या आने वाली है, दुनिया भर की समस्या है। तेरेसा जन्म बहुत पाप किए हैं, देवहान के अंदर हमने कितने पाप किए, अनगिनत पाप किए, इतना पापों का वजह सिर पे है, उस सबको खत्म करने के लिए वो अमूल्य पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को अगर सही ढंग से समझेंगे और जीवन में अप्लाई करेंगे तो ये 7 बातें ध्यान रहे। पहली बात, मुरली का हर महावाक्य में क्या है? गुह्यता है। हर एक महावाक्य में राज, कई राज समाये हैं। हर एक महावाक्य में कई रहस्य समाये हैं। हर एक महावाक्य में क्या है? महीनता है। हर एक महावाक्य सूक्ष्म है, सिंपल नहीं है, सूक्ष्म है, और हर एक महावाक्य अमूल्य है। तो ये 6 बातें हुई ना, 6 बातें हर हर महावाक्य को पढ़ते हुए ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और विधि हमने बताई थी कैसे मनन कर, मनन माना रिवाइज करना, मन मन में रिवाइज करो। मुरली सुबह सुनी, मन मन में बजती रहे, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, जैसे बाबा ने कहा सुबह कहा देही मानी बाप, तुम्हें देही मानी बनाने के लिए आए। बाबा ने कहा क्या नाम रूप की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है ना, है ना, वही हमें बेकार में गिरा देती है, वही हमको आगे नहीं जाने देती है, उससे ही हम बाबा को याद, उस नाम रूप को याद करते हैं, उस बाबा को याद करना भूल जाते हैं। जब नाम रूप को याद करते हैं हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और जब हम बाप को याद करते हैं हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज माना आत्मा में और ज्ञान समा जाता है, सत्य की समझ और बढ़ जाती है, पवित्रता बढ़ जाती है, शांति बढ़ जाती है, रूहानी प्रेम बढ़ जाता है, अतिंद्रिय सुख बढ़ जाता है, आनंद बढ़ जाता है, शक्तियां बढ़ जाती है। तो मनन ऐसे अंदर रिवाइज करें, मनन रिवाइज करो बार बार अंदर, नहीं रिवाइज नहीं याद आ रही तो मुरली खोल के वो लाइन को देखो, बाबा ने क्या कहा था, एक्यूरेट बाबा की लाइन क्या थी, मन में नहीं याद आ रही, एक्यूरेट याद नहीं आ रही है वो लाइन, तो तुरंत महावाक्य खोल के डिटेल में देख लो, जेब में रखो और मुरली तुरंत निकाल के जेब में। मैं तो हमेशा कहता हूँ बाबा की मुरली क्या है, लव लेटर ना बाबा का, हम आशिक है वो हमारा माशूक है, तो लव लेटर कहाँ रखने चाहिए, कहाँ रखते हैं, दिल के पास रखते हैं ना। और कैसे पढ़ते हैं, छुपा के पढ़ते हैं, ऐसे नहीं सबको दिखा के पढ़ते हैं क्या, ये मेरा गुप्त पुरुषार्थ है ना, बाबा का मेरा प्यार सूक्ष्म है ना, प्यार दिखाने का नहीं है, गुप्त है। तो इसको जैसे ही मौका मिले, जैसे ही टाइम मिले निकाला देखा, अंदर अंदर मनन चल रहा है लगातार, रिवाइज हो रही है मुरली, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, फिर चिंतन माना उसकी गहराई में चले जाओ, बाबा मुझे तो ऐसा बनना ही है। चिंतन करते करते हम मगन मगन हो जाते हैं, चिंतन, चिंतन माना मुझे चिंता लग जाए, चिंता तो नेगेटिव शब्द है, चिंतन पॉजिटिव शब्द है, सुख देने वाला है। चिंतन करते करते हम मगन हो जाए उसमें कि हाँ बाबा मुझे सही बनना ही है, बाबा आपने कहा ना ऐसा बनना है, मुझे कामजीत बनना है, मुझे कोई इच्छा नहीं चाहिए, मुझे इच्छा मात्र में विद्या बनना ही है। बाबा इच्छाएं बहुत तंग करती हैं, इच्छाओं से परेशान हूं, आज सारी दुनिया इच्छाओं से परेशान है, है ना, लोग भाग क्यों रहे, नींद क्यों नहीं आ रही, इच्छाएं उनको तंग करे बैठी है, करोड़पति अरबपति को भी इच्छाएं तंग कर रही है, और ज्यादा कमा लूं, और ज्यादा कर लूं, जो जिम में जाते हैं बॉडी बनाने में लगे, उनकी बॉडी और बॉडी को बना लूं, और मसल्स को बना लूं, और इसको बना लूं, जो भी जो काम कर रहा है स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स वाला चाहता है मैं और आगे चला जाऊं, और आगे चला जाऊं। हर व्यक्ति जिस भी फील्ड में है, चाहे मेडिकल के फील्ड में है, चाहे वो इंजीनियर है, हर फील्ड में इसकी सैलरी इतनी बढ़ गई, अच्छी और सैलरी बढ़ा दूं, और इनकम बढ़ा लूं, इच्छाएं तो आज तंग कर रही है मनुष्य को। तो आज मतलब बाबा के जैसे मुरली का हम एक एक जैसे मनन करके रिवाइज चिंतन कर लो कि बाबा मैं ऐसा बनना चाहता हूं, अब फिर कैसे बनूं, मंथन मना कैसे बनूं, जब लगन लग गई फिर मगन हो गए तो अब बाबा से क्या करो, बाबा से पूछो बाबा कैसे हो सकता है, बाबा इच्छा मेरे को ही ना रहे, दुनिया मेरे को बहुत इच्छाएं हैं, बाबा में ये भी तो इच्छा है ना, बाबा मैं ये बन जाऊं, बाबा मैं 108 की माला का दाना बन जाऊं, मैं तो नारायण बन जाऊं, मैं तो बाबा ऐसा बन जाऊं, बाबा मैं तो ऐसा बन जाऊं, ये इच्छा भी है ना, ये भी इच्छा तंग करते कई बार ना, मेरा पद तो वही मिल रहा है जो मुझे बनना है ना, मैं अपना पुरुषार्थ करूं, एम ऑब्जेक्ट रखूं लक्ष्मी नारायण जैसे बनने का, कि तो जो पद मिलेगा वो वैसा मिलेगा ना, संतुष्टता की शक्ति चाहिए ना, तो वो संतुष्टता की शक्ति मेरे को बाबा मेरे को कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी बाबा, तो बाबा से पूछे ना। तो जब मंथन बना, खुद पीसा, उसके बाद क्या किया, उसके बाद फिर उसको बाबा से पूछा तो मक्खन निकला है। जैसे आंतों में ना हम पेट में खाना खाते हैं ना, पहले तो मुंह में चबाते हैं, जैसे मुंह में चबाना मना मनन करना है ना, मन मन में हमने मनन किया, फिर खाना पेट में जाता है, फिर 3 घंटे पेट में रहता है, तो उसका चिंतन, चिंतन माना उसके ऊपर एसिड डलता है, उसके ऊपर एंजाइम्स डलते हैं, 3 घंटे पेट में उसको खूब पिसाई होती है ना, खाने की 3 घंटे पिसाई होती है, तो उसकी 3 घंटे वो जैसे चिंतन है, फिर छोटी आंत में जाता है, अभी भी खाने में ताकत, पेट में खाना अब्जॉर्व नहीं होता है, फिर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के जूस निकलते हैं, लीवर के जूस आते हैं, पित्त आता है उसमें से, पेनक्रियाज में से जूस आता है, आंतों का और जूस आता है, फिर उसकी खूब और पिसाई होती है, 3 घंटा और पिसाई होती है छोटी आंत में। तो ये जैसे मंथन होता है उसका, बकायदा मंथन यूं करके ना उसका चक्की चलती है अंदर, छोटी आंत में चक्की जैसे चलती है, पेट में चक्की नहीं चलती है, फिर छोटी आंत में चक्की चलती है, तो आंतों का आखिरी हिस्सा है उसको टर्मिनल एलियम कहते हैं, वहां पे खाना एब्जॉर्व होता है, वहां जाके खाना एब्जॉर्व होता है, तो वहां खाना फिर उसके बाद एब्जॉर्व होता है, फिर मतलब अब वो स्वरूप बनता है, खून बनता है उसका, पहले खून में जाएगा, फिर हड्डियों में जाएगा, हड्डियों में जाकर खून बनेगा, और खून से फिर ताकत आएगी। सेम प्रोसेस यहां पर है, पहले मनन किया, मुंह में चबाया, अगर चबाओगे नहीं तो खाना ताकत नहीं देगा, डायबिटीज हो जाएगी, जो लोग खाना नहीं चबाते उनको डायबिटीज जल्दी हो जाती है ना, उनके पेट में एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी, है ना। सेम चीज यहां पर है, अगर हमने खाना नहीं चबाया, ये मुरली रूपी खाना नहीं चबाया, तो क्या होगा, ज्ञान के पॉइंट तो बहुत आ गए, ज्ञान के बहुत पॉइंट हो गए आपकी बुद्धि में, ये अभी आ गया, ये भी आ गया, बने तो हम कुछ भी नहीं, अभी भी गुस्सा आ रहा है, अभी भी चिंता हो रही है, अभी भी जल्दीबाजी आ रही है, तो लगता बाबा क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, गैप बहुत आता है, बहुत गैप हो जाता है। जैसे खाना तो बहुत ताकत वाला खाया, हाथ पैर में दर्द हो रही है, पेट में गैस बन रही है, सिर में दर्द बन रहा है, एसिडिटी जलन हो रही है, नहीं क्या निशानी है, खाना पचा नहीं ना, यही पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने मोटा मोटा मोटे पीस तो अंदर पची नहीं सकते हैं, ये वाला काम तो आपने किया ही नहीं। तो बिना मनन के ऐसा ही है मुरली सुनना, एक बार मुरली सुनी सुबह और सात दिन भूल गए, तो मनन माना उसको रिवाइज करो, खूब चबाओ, खूब चबाओ। आधा खाना तो कहते हैं यहीं पच जाता है, उसमें ग्लूकोज तो यहीं पच जाता है, कार्बोहाइड्रेट यहीं पच जाते हैं, मुंह में ही पच जाते हैं, है ना। और 100 ml में 200 ml जूस मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 100 ग्राम खाने में पेट भर जाना चाहिए, 100 ग्राम खाना खाया खूब अच्छे चबाओ, 200 ग्राम जूस मिल जाएगा, 300 ग्राम में पेट भर जाता है, है ना। तो 300 ज्यादा सुनने, ज्यादा कई लोग क्या करते हैं, सारा दिन मुरली सुनते रहते हैं, कान में लगा के माइक क्लासेस सुनते रहेंगे, किंतु उनका मनन चिंतन कुछ भी नहीं है ना, तो उससे कुछ, उससे मन परिवर्तन नहीं होता है, क्लासेस सुनते रहे किसी, कभी किसी क्लास, कभी किसी क्लास, नहीं, बाबा की मुरली सत्य है, बाबा परम सत्य है, बाबा की मुरली सत्य है, यही सत्संग है। तो बाबा की मुरली का शुद्ध मनन करते हो, बार बार रिवाइज करो, चिंतन बाबा मुझे ऐसा बनना, फिर मंथन, फिर बाबा से कंबाइंड होकर करो मंथन, हमेशा मतलब दूसरे से कंबाइंड होकर किया जाता है, मतलब परमात्मा से कंबाइंड होकर हम कर रहे हैं मंथन। तो बाबा से पूछ रहे हैं, बाबा से बात कर रहे हैं, बाबा कैसे बनू, वो मक्खन निकला ना, अब मक्खन निकल आया, अब मक्खन को कार्य में लगाना, कार्य करते समय याद रखना कि मुझे बाबा इसी अब इसी ढंग से कार्य करना है। बाबा ने कहा बच्चे मीठा, सबसे मीठा बोलो, सबसे मीठा व्यवहार करो, मुझे अब इसी व्यवहार में रहकर कार्य करना है, मुझे कोई इच्छा नहीं चाहिए, किसी से बात करूं मैं निस्वार्थ भाव से सेवा बात करूं, किसी की सेवा करूं निस्वार्थ भाव से सेवा करूं, उसकी उससे दुआएं मिलेंगी। अगर मेरा स्वार्थ भाव दुआएं नहीं मिलेंगी उसका फायदा नहीं है, मेरा दुआओं का खाता जमा नहीं होगा। तो ये अपने आप से गहराई समझने की बात है। तो इसलिए कहते हैं सिमरण माना, मनन चिंतन मंथन सिमरण, सिमरण का अर्थ क्या है, सिमरण का अर्थ क्या है, सिमरण माना, कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के। जब वो मक्खन निकला उसको मैंने कार्य करते समय याद रखा कि मुझे ऐसा ही ये कर्म इस ढंग से ही करना जैसे बाबा ने कहा, अब मेरे को नए संस्कार बनते जा रहे, मेरे अंदर नई 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 एकदम से नई मेरी दृष्टि बदलती जा रही है, मेरी आस्था बदलती जा रही है, मेरी आदत बदलती जा रही है, अब ऑटोमेटिक मेरा क्या होगा, अगले दिन वो कार्य उसी ढंग से होगा। बार बार मुझे वो चीज रिकॉर्ड हो गई ना, अब वही फाइल बार बार खुलेगी, वही सीडी खुल जाएगी, बार बार अपने आप ही खुल जाएगी। कल की मुरली की सीडी आज खुलेगी, आज भी खुलेगी, परसों की मुरली की सीडी आज भी खुलेगी, कर्म करते समय वो पॉइंट याद आएगा एकदम से, बाबा ने ऐसे कहा था, उसका मक्खन क्या था, मक्खन ये था, मैं ऐसे करके दिखाऊं, तो मेरा जीवन रोज परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए इस बैकग्राउंड के साथ आज की मुरली संडे की मुरली को देखते हैं ना। ये 5/12/84 की मुरली है, मतलब लगभग कितने साल पहले, 16 साल और 18 साल, 34 साल, 34 साल 6 महीने हो गए है ना, 34 साल 6 महीने पहले की मुरली है ना। वो सुनो, संपूर्ण कामजीत अर्थात हद की कामनाओं से परे। कामजीत, काम शब्द का अर्थ क्या है, मैं यहां पर कामजीत का मतलब मैंने कई मुरली में पढ़ा है, काम का मतलब है देह दृष्टि, अपने को या किसी को भी देह की दृष्टि से देखना, ये काम विकार है। आधा कल्प हम काम चिता पे चढ़े रहे, अपने को भी देह के रूप में देखते रहे और दूसरों को भी देह के रूप में देखते रहे, तो काम चिता इस देह की दृष्टि के कारण, इस देह के आकर्षण के कारण हम विकारों से ग्रसित रहे हैं, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चों से दिन रात जलते रहे, काम चिता पे बैठे रहे, और काम चिता बैठने से क्या हुआ है, हमारे अंदर ये जो तरह तरह की बीमारियां, मन की बीमारियां, तन की बीमारियां, नींद ना आना, डिप्रेशन हो जाना, फोबिया हो जाना, बहुत डर लगना है ना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, एसिडिटी, दमा, माइग्रेन, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द होने लगा है ना, हर अंग अंग बीमार है, जहां देखो वहीं दर्द है ना, ऐसी हालत हो गई। तो काम जीत का मतलब है काम माना देह दृष्टि, काम विकार का ब्राह्मणों के लिए काम का अर्थ कुछ और है ना, कि देह की दृष्टि सूक्ष्म रूप में, उसी से काम विकार पैदा होता है ना। तो काम चिता ना, काम जीत अर्थात हद की कामनाओं से परे। जैसे ही हम देह दृष्टि खत्म करते हैं, आत्मिक दृष्टि पैदा करते हैं, हद की कामनाएं सारी खत्म हो जाती है ना। तो इसके मतलब एक एक मैंने कहा ना, इसलिए हर महावाक्य, हर अक्षर, हर शब्द में मीनिंग है, उसकी गहराई में जाके जब मुरली पढ़ते हैं, उसकी गहराई में जाके मुरली पढ़ो, पढ़ो भी, रिवाइज भी करो, और फिर गहराई में भी जाओ, चिंतन करो, फिर मंथन बाबा से उसी गहराई से बात करो, और फिर कर्म में लगाओ, उसी गहराई से कर्म में लगाएं। तो आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ भुजाओं को देख रहे हैं, हमेशा ये नशा होना चाहिए कि हम बाबा का, मैं बाबा का बच्चा बना तो क्यों हूं, बाबा की सर्वश्रेष्ठ भुजाओं, मधुबन में रहते हैं तो मधुबन में रहते हैं तो क्या मतलब है, बाबा ने कहां से कितनी 750 करोड़ आत्माओं में से मुझे चुना है, मुझे मधुबन में रखा है, उन 500 आत्माओं में से मैं हूं जो बाबा ने अपने अपने घर में अपने अपने साथ रखा है, अपने लगन मुझे उस वहां रखा हुआ है, चाहे मैं हॉस्पिटल में हूं, चाहे मैं शांतिवन में हूं, चाहे मैं ज्ञान सरोवर में हूं, चाहे पांडव भवन में हूं, मुझे यहां रखा है, और चाहे आप कहीं और जगह से भी आए, सेंटर इंचार्ज है ना, सेंटर मुझे कितनी बहने, 16-17 हजार, 20 हजार, 25 हजार बहने, सारे राजाओं को बाबा ने, मुझे राजा बनना ही है, बना मुझे बाबा ने क्यों टीचर क्यों बनाया, क्योंकि राजा बनाने के लिए, क्योंकि आप अपने एरिया के इंचार्ज हैं, अपने एरिया के सेंटर की इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आप राजा ही बनेंगे ना, आपने प्रजा बनाई तो राजा बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे ना, जो प्रजा बनाएगा वो राजा बनेगा। तो हम बाबा की भुजा है, क्योंकि बाबा ने मुझे जो भी कार्य कराना है बाबा ने मेरे द्वारा कराना है, विश्व को परिवर्तन कराना है, नरक को स्वर्ग बनाना है मेरे द्वारा बनाना है, तो मैं बाबा की भुजा हूं, कौन सी भुजा हूं, राइट के लेफ्ट, राइट हैंड, राइट हैंड हूं, तो ये नशा जैसे बाबा का सबसे बुझा, बाबा जैसे बैठा बाबा है, साथ में सूक्ष्म वतन में बाबा है, बाबा माना शिव बाबा, ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा क्या चीज है? अव्यक्त। जब अव्यक्त बात दादा की, और साकार मुरली में क्या फर्क है? साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण नहीं है, ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ में लगे किसको? अपनी बुद्धि को निराकार बाप से कंबाइंड होके निराकार शिव बाबा की श्रीमत पे हर कदम, हर कदम पर, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास शिव बाबा की श्रीमत पे चल के, और अपने बुद्धि को, मन को और संस्कारों को संपूर्ण पावन सतोपदान बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए, दिल को सच्ची और साफ बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए। और अव्यक्त बाप दादा का मतलब, अव्यक्त ब्रह्मा का मतलब क्या है? उन्होंने निराकार शिव बाबा से निरंतर कंबाइंड रह के और निरंतर शिव बाबा की श्रीमत पे चल के अपनी बुद्धि को, मन को और संस्कारों को संपूर्ण पावन सतोप्रधान बना लिया है। सतोप्रधान माना सातों एनर्जी से भर लिया है, उसके एक एक संकल्प में ये सातों एनर्जी भर गई है, एक एक भावना में सातों एनर्जी भरी हुई है। वो उसकी भावना ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से भरपूर है, सत्य की समझ से भरपूर है, पवित्रता से भरपूर है, शांति, रूहानी प्रेम, अतेंद्रिय सुख, आनंद, एक एक शक्ति से भरपूर है। तो सातों गुणों से भरपूर है उसकी, और उसमें शिव बाबा कौन है? सत्य की समझ का पावर हाउस है, पवित्रता का पावर हाउस है, शांति प्रेम सुखामन शक्तियों का पावर हाउस है। तो पावर हाउस ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर लाइट की बॉडी में बैठा है, और यहां से सारे एक एक रोम रोम में, माना हर संकल्प हर भावना में वो चमक रहा है, बाबा शिव बाबा चमक रहा है, उसकी एनर्जी चमक रही है ऐसा। और जब ऐसा बाबा जब अव्यक्त संपूर्ण बना तो कहां जाके बैठ गया? वो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चा कहां जाके बैठ गया? शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया। तो ये क्या बन गया? ये सूक्ष्म वतन है। अगर मुझे अभी सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में जाके पहुंचना है तो क्या मैं कौन हूं? भुजा हूं उसकी, ऐसे बाबा की भुजा हूं, इतना बड़ा बाबा उसकी मैं भुजा हूं, बाबा मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। तो आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ भुजाओं को देख रहे हैं, सभी भुजाएं स्नेह और शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन करने कार्य में लगी हुई है। सभी भुजाएं, हम सब भुजाएं हैं बाबा की, ये नशा होना चाहिए, हम सब बाबा की राइट हैंड है, राइट हैंड भुजाएं। और बाप किससे स्नेह माना? स्नेह का अर्थ क्या है? स्नेह का अर्थ क्या है? पहले तो मैं बाबा को, बाबा जो है जैसा है। स्नेह का अर्थ क्या होता है? अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच अदर एंड एवरी वन इन द यूनिवर्स। विश्व में हर आत्मा को बिना किसी शर्त के दिल से, सम्मान से, उसके हर पार्ट के साथ स्वीकार करना। हमने शिव बाबा के बारे क्या सोचा था? आधा कल्प क्या सोचा? शिव बाबा कैसा होगा? हजार सूर्य से भी तेजोमय होगा, है ना? वो ऐसा ऐसा करता होगा, जिंदे को भी मरे को भी जिंदा कर देगा, है ना? जादूगर कर देगा। एक बार साक्षात्कार हो जाएगा तो हमारे सारे पाप विनाश खत्म हो जाएंगे, है ना? यही सोचते थे ना, एक बार साक्षात्कार होगा ऐसे रूप में, विष्णु के रूप में आएगा, हमारे सारे विकार खत्म हो जाएंगे, हम एकदम परम धाम चले जाएंगे, हम एकदम स्वर्ग में चले जाएंगे, यही समझते थे। अभी बाबा आया, बाबा बहुत साधारण रूप में आया, है ना? और कितनी सिंपल बातें करता है, कितनी सहज बातें करता है, कैसे हमसे गोदी में बिठाता है, कैसा प्यार करता है, कभी सोचा ही नहीं था। तो बाबा जैसे जो है जैसा है उसको स्वीकार करना, ये स्नेह है। फिर मेरे साथ जो घर, जो लौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में जो भी आत्माएं रह रही हैं, उनको भी जो है जैसे स्वीकार करना, ये स्नेह है। जो भी दुनियावी आत्माएं हैं, विकारों में फंसी हुई है बेचारी, वो भी कैसी है, जो है जैसे वैसा स्वीकार करना, इसे बोलते स्नेह। जो है जैसा है उसको उस पार्ट के साथ स्वीकार, दिल से स्वीकार करना, बिना किसी शर्त के। तुम ये छोड़ दो, तुम कोई शर्त नहीं है, तुम ये छोड़ दो, तुम ये बदल जाओ, तुम रोज ऐसे करो तो मैं आपसे बात करूं, तो मैं आपको ज्ञान की बात करूं, नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं, मैं बात नहीं करूंगी। नहीं, स्नेह का मतलब यह है हर आत्मा को स्नेह से स्वीकार करना। और शक्ति, शक्ति कौन सी? सत्य को परख के, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा हूं, मैं ये भी उस बाप के बच्चे हैं, मैं भी उस बाप का बच्चा हूं, मेरे को समझ आ गई है, इनको समझ नहीं है, तो रहम आएगा ना। तो एक एक अक्षर की गहराई में जाओ तब मुरली सुनने में रस आएगा, तब मुरली को अनुभव करने में रस आएगा, नहीं तो रस नहीं आता है, समझ नहीं आती हम क्या बात कर रहे हैं। शक्ति का मतलब क्या है? सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, बड़ी पहाड़ जैसी बात को राई बना देने की शक्ति, समेटने की शक्ति, मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाना, करंट खींचना, तो करंट आई तो सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की शक्ति आ गई, सहयोग करने की शक्ति आ गई। तो शक्ति आठों शक्तियां उसका स्वरूप बन के सुनो द्वारा विश्व की विश्व को परिवर्तन करने कार्य में लगी हुई है। तो स्नेह माना विश्व में जो भी आत्मा जैसे भी है सबका कल्याण हो, सब मेरे बाप के बच्चे हैं, हम सब एक बाप के बच्चे हैं, है ना, एक की सब भुजाएं हैं, हम सब एक की भुजाएं हैं, इसलिए सबके अंदर एक ही लगन है। क्या लगन है कि अपने ईश्वरीय परिवार के अपने ही भाई बहने जो बाप को और अपने असली परिवार को ना जानने के कारण बच्चे होते हुए भी भाग्य विधाता द्वारा बाप का भाग्य प्राप्त करने से वंचित है। जो भी अभी तुमको ज्ञान नहीं मिला है वो क्या बेचारे वंचित है ना ज्ञान से मिलने से, क्योंकि बाप को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते, अपने को देह समझ के विकारों में खोए हुए हैं, उनको कोई बेचारों को होश नहीं है ना। तो उस पे रहम आएगा ना, नहीं आएगा कि मेरे भी भाई बहन है बेचारे भूखे प्यासे कटोरा लेके घूम रहे हैं कभी कहीं कभी कहीं, उनको सत्य ज्ञान मिल जाए समझ मिल जाए तो उसके लिए लगन लगेगी ना। मेरे को नींद नहीं आएगी कि मेरा भाई तो भूखा सो रहा है, वो तो बेचारा सच आत्मा की भूख कौन सी है, ज्ञान ही उसकी भूख है ना, सत्य समझ अमृत मिल जाए तो बेचारे को शांति मिल जाए ना, बेचैनी खत्म हो जाए ना। तो जैसे हमारी बेचैनी खत्म हो गई, हमारे चित्त को चैन मिला, उनके चित्त को चैन नहीं है, बेचैन है, पैसा होते भी बेचैन है, पढ़ाई करके भी बेचैन है ना। तो बाबा जैसे कहते ना, ऐसे भाग्य से वंचित आत्माओं को सुरजीत करें, मतलब उनको जागृत करें, ऐसे ऐसे महसूस करो कि मैं कैसे बाबा के साथ कंबाइंड और सारे विश्व को कैसे मैं कंबाइंड दे रहा हूं। महसूस करो, विजुलाइज नहीं करो, महसूस करो, चलते फिरते महसूस करो। विजुलाइज करना मुश्किल होता है, रियल को रियलाइज करना आसान होता है ना, सत्य को रियलाइज करना बहुत सहज होता है। माँ बाप को जब याद करते हैं, माँ बाप को सामने विजुलाइज नहीं करते हैं, माँ बाप के प्यार को उनकी डायरेक्शन पे हाँ मैं चल रहा हूं तो माँ बाप सामने ही है, माँ बाप की गोद में ही हूँ, माँ बाप के दिल में समाया हुआ हूँ, अगर माँ बाप को आज्ञा पे नहीं चल रहा हूं है ना, तो मैं कितना भी विजुलाइज करके गोद में बैठ जाऊं तो माँ बाप को सुख थोड़ी ना मिलेगा, है ना। उसके कर्म उसकी श्रीमत पे चलना ही प्यार है, उसकी श्रीमत पे चलना ही उसकी गोद में बैठना है, उसकी श्रीमत पे चलना ही उसी उसका हाथ अपने सिर पे है ना, श्रीमत रूपी हाथ कहते हैं ना। तो ये नहीं कि मैं विजुलाइज करता बैठूं और फिर अपने आप को ऐसे और श्रीमत पे ना चलो, कोई फायदा नहीं है ना। सचमुच में उसकी एक एक डायरेक्शन का मजा लूं, आनंद लूं तो मजा है ना। कुछ ना कुछ अधिकार की अंजलि द्वारा उनको भी बाप के परिचय से परिचित करें, क्योंकि आप सभी सारी वंशावली के बड़े हो। हम ब्राह्मण कौन है, हम वो आत्मा जिनको बाबा ने सब पहले पहले ज्ञान दिया और हम उसको समझ गए, उसके पे चल पड़े हैं, तो हम बड़े हैं। और बड़े क्या करते हैं, तो बड़े बच्चे बाप समान गाए जाते हैं, तो हमारे छोटे भाई बहन है ना, हमारी ही वंशावली है। एक मैंने लास्ट टाइम में बात कही थी, आपको भी दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि जो भी आपके कनेक्शन में है, माता पिता हैं, आपके भाई बहने हैं, आपके पति हैं, पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके जहां काम करते हैं वो भी जो आपके बहुत संबंध संपर्क में है, वो सभी देवी देवता परिवार की आत्माएं हैं। वो त्रेता तक आप कहीं ना कहीं आने वाले हैं, आपके ही परिवार में आने वाले हैं, आपके ही बच्चे बनने वाले हैं, आपके किसी संबंध में आने वाले हैं। ये ऐसा ना समझे कि ये कोई कलयुगी आत्माएं हैं, है ना, ये हमारे ही परिवार के बिछड़ी हुई आत्माएं, क्योंकि हमारा संबंध संपर्क किसी ऐसे व्यक्ति से हो ही नहीं सकता जो कलयुगी आत्माएं हैं, जो द्वापर से आने वाली है। हमारा संबंध संपर्क उन्हीं आत्माओं से होगा जो सत्य हुए त्रेता में आने वाली है। तो ये ध्यान रहे, कई बार हम सोचते हैं ये तो इसका तो हमारे से कनेक्शन कोई नहीं है, भले हमारे घर में पैदा हुआ है तो हमारा कनेक्शन नहीं, हमारे ही घर में हमारा ही बच्चा है, हमारा ही साथी है, उसको मुझे ही और मैं ही निमित्त हूं उसको सुधारने के लिए, सुरजीत करने के लिए, ये मेरी फर्ज है। तो मैं बोल के ना सिखाऊं, कर्मों से सिखाऊं, है ना। घर वालों को हम बोल के नहीं सिखा सकते ज्ञान, बोल के नहीं, मेरे कर्म, मेरे अंदर मधुरता, मेरे अंदर धैर्यता, मेरे अंदर नम्रता, मेरे अंदर सहनशीलता, मेरे अंदर दृढ़ता, मेरी संतुष्टता, मेरी यशस्वी मुक्तता, है ना, वो उससे बदलेगा, राइट। ये ध्यान रखने का, इसलिए बड़ों को छोटे अनजान भाई बहनों प्रति रहम और प्यार स्वतः ही आता है ना? तो उनके उनको क्रोध करते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता, हमें रहम आता, देखो कितनी अपनी एनर्जी खत्म कर रहा है ये, देखो चिंता कितनी चिंता में लगा हुआ है, कितना सारा दिन रात पैसा कमाने के पीछे लगा हुआ है, जो साथ जाना ही नहीं है, यही रह जाना है ना, तो रहम आता है। कितना बड़ा परिवार है, सारा बेहद का परिवार सामने रहता है, जैसे माँ बाप को अपने पांचों बच्चे याद रहते हैं ना, तीन बच्चे तीनों याद रहते हैं, कहीं भी रहते हो तो हमेशा आंखों के सामने रहते हैं, ऐसे ही हम बड़े हैं तो हमें पूरा विश्व की हर आत्मा दिखाई देनी चाहिए कि मेरे को सबके लिए करंट खींचनी है, करंट खींच के इनको देनी है। ऐसा नशा रहे तो कभी अलबेलापन नहीं आए, कभी आलस नहीं आए, अमृत तेल में झुटके नहीं आए, मुरली में झुटका नहीं आए, नहीं लगन लगी रहे ना। सभी प्रति रहम की किरणें, रूहानी आशीर्वाद की किरणें, वरदान की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य होना। तो ऐसा जो अब जैसे ज्ञान है ना, अब ज्ञान सूर्य है ना, तो ज्ञान सूर्य क्या, तो जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे उतनी पवित्रता, हम पवित्रता के सूरज बनते जाएंगे, तब सामने आने वाली आत्माओं को पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। मैं जैसे बैठा हूं यहां पर, तो मेरे कितना मैं ज्ञान का सारा दिन मनन चिंतन मंथन करता रहता हूं, उसके आधार पे मेरा पवित्रता का आभा मंडल बनेगा। और कितना बनेगा, 6 इंच बनेगा, 2 फुट बनेगा, कि 8 फुट बनेगा, कि 32 फुट बनेगा, 128 फुट किस आधार पर बनेगा, जितना मैं ज्ञान को क्या करता हूं, घोटता रहता हूं, चिंतन मनन चिंतन मंथन। मनन चिंतन मंथन क्या है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, नशा किस चीज का, पवित्रता का। पवित्रता का मतलब क्या है, तब मैं अपना सत्य स्वरूप निरंतर अनुभव होगा, दूसरे का सत्य स्वरूप दिखाई देगा और सत्य स्वरूप में ही मैं व्यवहार करूंगा, और फिर क्या होगा, सत्य स्वरूप में व्यवहार करेंगे और फिर लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाएगा। बैठे बैठे किसी आत्मा को फोन कर लूं, उसको बात कर लूं, नहीं, ऊपर बात करूं ना, उससे क्या बात करना है, उसको क्यों फोन करूं, उसको व्हाट्सएप क्यों भेजूं, उसको फेसबुक पे क्यों टाइम वेस्ट करूं, ऊपर बात करूं ना, उससे बात करूं ना, जो मेरा साजन है उससे बात करूं ना, तो ऐसी लगन लगेगी, लगाव खत्म, झुकाव खत्म, किसी का प्रभाव नहीं, एक बाबा के प्रभाव के अलावा किसी का प्रभाव नहीं, एक बाबा से लगाव, बाबा में झुकाव, बाबा में प्रभाव, ये है पवित्रता, किसी तरह से टकराव नहीं, अगर है तो अपवित्रता है। तो जितना मैं ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया उतना ही मेरी पवित्रता बढ़ गई, है ना। किसी बात में क्या क्यों कैसे नहीं, किसी बात में क्या क्यों कैसे नहीं, अगर क्या क्यों कैसे है, ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, बहन जी को ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं कौन होता हूं, डायरेक्टर बैठा है ना, क्रिएटर बैठा है ना, मैं तो एक्टर हूं, तो ये पवित्रता। तो लगाव झुका प्रभाव टकराव होगा तो बैठूंगा बाबा को याद करने, याद वो आएगी, याद वो आएगा, है ना, क्या क्यों कैसे वाला याद है, गैर संकल्प चलेंगे ना तो अपवित्रता हो गई। फिर ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी माना सत्य स्वरूप को देखना, अपने सत्य वही बात है, और ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट फॉलो करना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे मैं फॉलो करूं। तो इसको लगातार अनुभव करते रहो कि हर चीज में ब्रह्मा, नया रास्ता नहीं बनाओ, जो बाबा ने किया उसको ही बोलेंगे पवित्रता, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण पवित्र बनकर दिखाया, ग्रस्त में रहते हुए, इतने बड़ी 380 के परिवार में रहते हुए सबके साथ रह के पवित्र बन के दिखाया, तो पवित्रता आ गई, है ना, पवित्रता आई ना। अब ये हम पवित्रता का सूर्य बन गए, फिर शांति का सूर्य, जब पवित्र मैं आत्मा पवित्रता की डिग्री आ गई, अब मैं असोचता बाप से कंबाइंड हो गया, क्योंकि बिना पवित्रता के लगाव झुकाव प्रभाव टकराव है तो बाबा से कंबाइंड नहीं हो सकता, मैं बीच में दूसरे आएंगे ना तो बाबा से कंबाइंड की अनुभूति नहीं होगी। तो मेरा बाप कौन है, असोचता है, उसको कभी पास का चिंतन नहीं चलता, भविष्य की चिंता नहीं होती, है ना, तो ऐसा मेरा बाबा है, तो क्या हुआ, उस जब मेरी इतनी पवित्रता आएगी तो मैं बाप से कंबाइन हो गया, तो मुझे भी क्या होगा, ना पास का चिंतन चलेगा ना भविष्य की चिंता होगी, और असोचता बाप से कंबाइंड होकर सोचता हूं, उसको कंबाइंड होकर देखता हूं, पढ़ता हूं, सुनता हूं, बोलता हूं, खाता हूं, लोगों से मिलता जुलते हैं हम, है ना, व्यवहार में आते हैं, कर्म में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो ये शांति, शांति में ना वर्तमान में बाबा से कंबाइन लेना, ना पास ना भविष्य, तो शांति आ गई ना, कितना थॉट ट्रैफिक कितना स्लो हो गया, अब बाबा के थॉट में टच कैच कर सकता हूं, बाबा की प्रेरणा कैच कर सकता हूं, बाबा की टचिंग कैच कर सकता हूं, तो टचिंग पावर और कैचिंग पावर बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, तो शांत आत्मा को भी बढ़ेगी ना। तो जब ऐसी शांति आ गई तो क्या हुआ, मैंने और मनन चिंतन किया और बाबा की मुरली को घोटा, तो क्या आया, फिर बाबा की मुरली में मैंने क्या देखा, जैसे बाबा सबको स्वीकार करता है ना, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हम दूसरे को स्वीकार क्यों नहीं करते, ये पास्ट में ऐसा करता था, ये पास्ट में ऐसे करती थी, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे ये ठीक कर ले तो मैं इसको स्वीकार कर लूं, मैं फिर इसके साथ काम कर सकता हूं, मैं इसके साथ काम कर सकती हूं, नहीं होता ऐसा। तो प्यार किसे कहते हैं? बिना शर्त के हर आत्मा को दिल से सम्मान से स्वीकार करना, उसके हर पाठ के साथ स्वीकार करना। जब पाठ का चिंतन ही खत्म हो गया, अब क्या हुआ? अब मेरे को स्वीकार करने में प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई भले मुझे गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, कोई बात नहीं, भले आओ ना, क्योंकि मैंने की हुई है। अच्छा कहते ना, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना। अच्छा मेरे पास रहे तो अच्छा है, मेरे जल्दी जल्दी साबुन लगा के साफ करता जाएगा, नहीं तो मेरा मेरी चित और साफ होती जाएगी, मेरा और ज्यादा मैं पवित्र बनती जाऊंगी आत्मा ना, तो फिर जो है हम उसको स्वीकार करते हैं। और जितने भी संबंधी आपके आसपास है ना, सेंटर पे या जो सेंटर पे बहने रहती हैं, आपके आसपास बहने रहती हैं, है ना, आपके आसपास भाई बहन रहते हैं, सेंटर पे जिज्ञासु आते हैं, या हमारे यहां पर हमारे आसपास भाई बहन है, जो भी हम शांति वन में समर्पित है, ज्ञान सरोवर पांडव में समर्पित, हॉस्पिटल में इकट्ठे काम करते हैं, पिछले जन्मों के संबंधी है, कई जन्म हम 84 जन्म संबंधी रहे हैं आपस में, एक दूसरे के पास रहे, जो कुछ ऊपर नीचे किया हुआ ना वही हमारे साथ है, वो उस ऊपर नीचे को खत्म करना है। ये धोबी घाट है, हमारा बाबा का घर क्या है? बेर का धोबी घाट है, है ना। तो क्या हो रहा है, बाबा क्या कर रहा है? वो था ना, मूत पलीसी कपड़े धोए, है ना, कौन से कपड़े धोने हैं? आत्मा के कपड़े। आत्मा के कपड़े कौन से हैं? ये बुद्धि है, बुद्धि जो मलिन बुद्धि हो गई, भ्रष्ट बुद्धि, वो धोनी है। किससे धोनी है? मुरली से धोनी है। मन है, मन में क्या है? संकल्प है, भावनाएं है, वृत्ति है, स्मृति है, उनको धोना है ना, संस्कार है, उनको धोना है। ये तीनों कपड़े साफ करने हैं। वैसे भी तीन कपड़े होते हैं ना इंसान के पास, तो ये आत्मा के तीन कपड़े, इनको धोना है तो आत्मा चमक जाएगी, स्वभाव सत्व प्रधान बन जाएगी। तो ये मूतपलीति हमारा विकारों से ग्रसित है, बुद्धि भी विकारों से ग्रसित है, मन भी विकारों से ग्रसित है, संस्कार भी विकारों से भरे हुए हैं, तो ये साफ स्वच्छ हो जाएंगे। तो ये बाबा ने जैसे बताया ना, इस तरह से मतलब मुरली में क्या, मुझे तो लगता है कई बार मैं 2-3-4-5 लाइनें पढ़ता हूँ उसमें खो जाता हूँ, फिर आगे बढ़ते बढ़ते कई दिन में, इसलिए अभ्यक्त मुरली मेरी पूरी हफ्ता चलती है ना, एक हफ्ते में जाके मेरी पूरी मनन चिंतन होता है, एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में तो एक पैराग्राफ ही मुश्किल से होता है ना, फिर उसकी गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, मतलब इतना रस इसमें आता है, बात नहीं पूछो, है ना। तो मैं देख रहा था, चलो यहां से चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ या आगे चल लेते हैं, चलो। जैसे सूर्य जितना स्वयं ऊंचा होगा तो चारों किरणें फैलाएंगे, नीचे होने से चारों किरणें नहीं फैला सकते। तो जितना सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म बहुत ऊंचा है, सारे विश्व से ऊंचा, पांच तत्व से ऊंचा है। तो अगर मैं बाप दादा की गोद में चला जाऊं, बाप दादा की गोद में कौन जाएगा? अगर मेरी बुद्धि शुद्ध होगी, मतलब बुद्धि शुद्ध का मतलब क्या है, बुद्धि पवित्र होगी, तो क्या बुद्धि माना पवित्र माना, बुद्धि में ज्ञान भरा होगा, तो पवित्र बुद्धि होगी, शांत बुद्धि होगी, रूहानी प्रेम से भरी होगी, है ना। अब इच्छा मात्र में विद्या की बात बाबा ने कितने इसमें, इच्छा मात्र में विद्या क्या मतलब क्या है, जब मैंने सबको स्वीकार कर लिया, मैंने क्या किया, बाप की श्रीमत को भी मैंने पवित्र भी बना लिया, और मन को शांत बना लिया, पवित्र बन, और सबको एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरी जो बुद्धि है, बुद्धि योग है ना, पहले बुद्धि योग लगा हुआ था किसी न किसी देहधारी में, है ना, लगाव कुछ चीज में लगा हुआ था। अब मैं जब पवित्र हो गया, माना लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म, क्या क्यों कैसे खत्म, ब्रह्मा जी बुद्धि में आ गए और मैंने सबको स्वीकार कर लिया। अब बुद्धि कहां गई सीधी, अब मेरी बुद्धि भी पवित्र, मन भी पवित्र हो गया, है ना। अब ये सूक्ष्म शरीर कैसा लाइट का बन गया। अब मेरी से एक माँ होती है ना, एक माँ के 5 बच्चे हों और मेरी 4 बच्चों से बातचीत ना होती हो, मैं बच्चा हूं एक, 4 से 4 को किसको डांट लगाई, किसको पिटाई करी, तो माँ की गोद में जा सकता हूँ क्या? जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। तो चारों को मैं स्वीकार कर लूं, अपने चारों भाई बहनों को बहुत प्यार से उनसे व्यवहार करूं, तो माँ कहे हाँ आजा बेटा, तू मेरा सपूत बच्चा है, मेरी गोद में आजा। तो ब्रह्मा बाबा की गोद में जाने के लिए जरूरी है हम सबको स्वीकार कर लें। जब ऐसी रूहानी प्यार की फीलिंग में जाते हैं तो ही हम सूक्ष्म वतन माना बाप दादा शिव बाबा के दिल में जाके बैठ सकते हैं, बाप दादा की गोद में जाके चढ़ सकते हैं। और जब बाबा की गोद में गए, अभी पीछे मुरली थी ना, बाप मुझे देख रहा है और बाबा ने कहा मैं बच्चे को देख रहा हूं, बच्चा मुझे देख रहा है और करंट खींच रहे हैं ना, तो मैं बाबा की गोद में, बाबा मुझे देख रहा है, दृष्टि दे रहा है और मैं बाबा को देख रहा हूं, ऐसे करके बाप बहुत प्यार से करंट खींच रहा हूं, बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, बाबा के मस्तक से और नैनों से करंट मेरे अंदर आ रहा है। करंट का मतलब क्या है? मुझे सत्य की समझ, मुझे फील हो रहा है कि मैं आत्मा हूं, समझ आ रही है कि मैं आत्मा हूं, रियल में आत्मा हूं, है ना। मैं मुझे लाइट में बिल्कुल बुद्धि और मन मेरा एकदम संपूर्ण पवित्र लाइट की बॉडी चमकीली ड्रेस में बैठा हूं। बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, मैं जो हूं जैसा हूं उसे स्वीकार कर, प्यार माना, बाबा मुझे स्वीकार किया, बाबा बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, आओ बच्चे आओ मेरी गोदी से लग जाओ, मेरे सीने से लग जाओ, बाबा मुझे प्यार दे रहा है, है ना। वो फीलिंग है ना, पवित्रता की फीलिंग। वो पवित्रता क्या होती है? वो फीलिंग, एकदम लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से परे की फीलिंग। दुनिया में जो है सबके सब एक्यूरेट कर्म कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहा, कोई दोषी नहीं है, पवित्रता की फीलिंग। शांति, कोई चिंतन नहीं, ना पास्ट का ना भविष्य का, बस बाबा है मैं हूं, बाबा है मैं हूं, बस मैं सागर की गोद में बैठा हूं, बेहद की फीलिंग आ रही है ना। प्यार, प्यार की फीलिंग आ गई, अचिंत्य सुख। अब ये अचिंत्य सुख की फीलिंग है, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, है ना। अब ये फीलिंग आई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पाना था सो पा लिया, बाबा की गोद में हूं, बाबा मेरे पास है, बाबा मेरे सामने, बाबा की गोद में, बाबा को प्यार, बाबा मुझे प्यार कर रहा है। ये जो फीलिंग है अत्यंत सुख की फीलिंग है, इच्छा मात्र विद्या। अब इसमें सर्व प्राप्ति मुझे मिल गई, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कोई मुझे कहे आपको कोई अवार्ड चाहिए, कुछ आपको इनाम चाहिए, कोई 10 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बाबा मिला, सब कुछ मिला, मुझे अब संतुष्टता आ गई, अब इच्छा मात्र विद्या की स्थिति आ गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है ना। फिर बाबा मुझे प्यार किए, बाबा मुझे देखे जा रहा है, बाबा मुझे गल लगा रहा है, बाबा ऐसे कर रहा है, वो सब मेरे दुख सुख दुख खत्म हो गए। अब मैं लीन हो गया बाबा के उसमें, लव लीन हो गया, बाबा के लव में लीन खो गया। अब ये आनंद की स्थिति है ना। अब मुझे होश ही नहीं है, बस बाबा बाबा बस बाबा। अब ये जो अत्यंत सुख आनंद का झूला है ना, ये झूला है, इसको विधेयी अवस्था कहते हैं। जैसे हमने मनन चिंतन की स्थिति है ना, मनन चिंतन मंथन मंथन की स्थिति है, वो देही मानी स्थिति है। जब मैंने पवित्रता शांति और प्यार को अनुभव कर रहा हूं तो ये आत्म मानी स्थिति है, आत्मा की निशानी है पवित्रता शांति और प्यार। और फिर जब मैं बाबा की गोद में हूं तो ये विधेयी स्थिति है, देह से परे की स्थिति है, देह की दुनिया से परे की स्थिति है, विधेयी स्थिति है, है ना। और फिर जब ऐसी स्थिति विधेयी स्थिति है तो मेरे को फील होता है फिर बाबा, बस अब बाबा शब्द रह जाता है, बाबा ही बुद्धि में रह जाता है, ये भान भी खत्म होता है मैं आत्मा हूं, बस अभी बाबा ही रह जाता है, बाबा बस, तो मैं परम धाम में बिंदु बन जाता है, बिंदु बन के बाबा की गोद में चला जाता है। अब ये जो स्थिति है इसमें सत्य को परखने की शक्ति, अब सत्य को परख लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई इच्छा खत्म हो गई, मुझे बस बाबा चाहिए, सत्य को परख लिया, यथार्थ निर्णय कर लिया, बस मुझे अब यही करना है, यही मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे देवता बनना है, एक ही लक्ष्य है, सत्य को परख लिया, यथार्थ निर्णय कर लिया। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, दुनिया छोड़नी पड़े, अमृत वेला करना है तो करूंगा, सुबह उठूंगा टाइम पर, भले कितने बजे मुझे रात को 12 बजे तक काम करना, तो भी क्योंकि 4 बजे मेरा बाबा मुझसे मिलता है, मुझे प्यार करता है गोदी में, मुझे शक्ति देता है, मुझे उठना ही है, 10 बजे सोना ही है, कैसा भी करके 9:30 सोना है, सैलरी कम मिले कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी मिले मुझे कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, इच्छाएं खत्म होगी ना, पहले तो इच्छाएं थी, अब इच्छा ज्यादा है ही नहीं, तो हम टाइम पे सो जाते हैं, टाइम पे उठ जाते हैं, और सुबह उठ के बाबा के से चिपक जाते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, विस्तार को सार में समेट लिया, देह और देह की दुनिया से बुद्धि हटा ली और सार में ले आया, बाबा की बस ABCD में लेके आ गया, आत्मा बाबा संबंध और ड्रामा, ड्रामा साक्षी दृष्टा और एक एक संबंध की अनुभूति। और मैं जब बाबा की गोद में बैठा हूं, एक एक संबंध की अनुभूति मुझे हो रही है, माँ की, बाप की, टीचर की, सदगुरु की, बंधु की, सखा की, साजन की, सज्जन की, घंटों बैठ सकते हैं बाबा की गोद में ना। और उस अनुभूति सत्य की अनुभूति, सत्य को परख लिया, ये साथ निर्णय कर लिया, सत्य को परखा माना मेरा विवेक अब कैसा बन गया, एकदम दिव्य बन गया ना, निर्णय शक्ति एकदम दिव्य बन गई, दैवी गुण पर आधारित। अब यह विस्तार को सार में को लाने की शक्ति, समेट के, समेटने की शक्ति माना मैंने मन बुद्धि को दुनिया से समेट के क्या किया, देव और देह की दुनिया समेट के बिंदी आत्मा बन गया, और बिंदी बाप से परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो गया। अब करंट आने लगी है, करंट, करंट क्या, सत्य को, सत्य को, सत्य को समझ क्या है, बिंदी बिंदी बिंदी, सब कुछ बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, हम सब बिंदी, और बिंदी बिंदी से सब संबंध है। पवित्रता क्या है, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, सब कुछ बिंदी है ना, है ना, मेरा बाप बिंदी, हम सब बिंदी, कोई लगाव झुकाव प्रभाव टकराव है ही नहीं, तो ये बिंदी। शांति क्या है, बिंदी बिंदी बिंदी। प्रेम क्या है, बिंदी बिंदी बिंदी, है ना। सुख क्या है, अत्यंत सुख क्या है, बिंदी बिंदी बिंदी, है ना। आनंद क्या है, बिंदी बिंदी, है ना। शक्ति क्या है, बिंदी बिंदी बिंदी, है ना। तो बिंदी संकल्प ही नहीं है ना, तो ये बिंदी, हाँ बिंदी ही सब कुछ है, मैं बिंदी, बाबा बिंदी, सब कुछ बिंदी, है ना, हर एक चीज को बिंदी, तो ये अब ये आगे स्थिति आई ना, जब बिंदी तो सहन, अब सहन करने की शक्ति, करंट आ गई ना, अब सहन करना आ गया, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समाना आ गया, सामना करना आ गया, सहयोग करना आ गया। जब आठों शक्तियां आ गई तो अब क्या ज्ञान और पवित्रता बराबर हो गई। पहले ज्ञान अधिक था, पवित्रता का इम्बेलेंस था। ज्ञान के बहुत पॉइंट, क्लास बहुत अच्छी करा सकते, पर अपने अंदर तो पवित्रता नहीं थी, लगाव झुकाव टकराव खत्म नहीं हुआ था, क्या क्यों कैसे खत्म नहीं हुई थी, मन खाती थी, ज्ञान तो बहुत है, पवित्रता नहीं है। अब पवित्रता बराबर आ गई, पवित्रता थी, शांति नहीं थी, कोई ना कोई पास की चीज खाई जा रही थी, पास उसने ऐसा किया, कोई पास का अनुभव खाया जा रहा था ना, अभी वो खत्म हो गया, अभी पास को माफ कर, सबको माफ कर दिया, प्रेम कहीं ना कहीं किससे क्या था, किसी को स्वीकार नहीं किया था, माफ नहीं किया था, अब माफ भी हो गया, प्यार भी हो गया है ना, अतिंद्रिय सुख आनंद, सातों एनर्जी बराबर हो गई, अब सातों एनर्जी बराबर हो, हीलिंग एनर्जी बन गई, अब मैं ऐसा जब करता हूं, कुछ भी करता हूं तो हील हो जाता है, संकल्प से लोग हील हो जाते हैं, संकल्प से मैं अपने आप को हील कर सकता हूं, हार्ट की तकलीफ है, पेट में तकलीफ हो रही है, गैस बननी बंद हो गई, पेट ठीक हो गया, सिर में दर्द खत्म हो गया, कमर ठीक हो गई, गर्दन ठीक हो गई ना, अब दर्द फील ही नहीं होता है। तो ऐसे सातों एनर्जी का बैलेंस अब ये बन गए, क्या हम क्या बन गए, अब हीलर बन गए है ना, अपने विक्रम विनाश होने शुरू हो गए, ऐसे विक्रम विनाश होने शुरू होता है। तो इस तरह से इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति, फिर हम जब मेरी मनोकामना कोई इच्छा ही नहीं है तो मैं दूसरों की मनोकामनाएं पूरी कर सकता हूं, नहीं तो मैं मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, फिर मैं बाबा से ही वो कर रहा हूं ना, बाबा से करंट खींचने, बाबा से बाबा मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये वाली इच्छा पूरा हो जाए तो योग लगेगा ही नहीं, विदेही स्थिति बनेगी नहीं, परम धाम में जाके विक्रम विनाश होंगे ही नहीं। तो ऐसा जब हम बाबा से कंबाइंड हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो हमारी ये खत्म होने लगती है। सुना, जैसे बाबा ने कहा हद की इच्छा है कि बाबा ये सेवा करनी है, इसके लिए ये सेवा के प्रति इच्छा है, ये इच्छा है, ये इच्छा है, तो बाबा क्या करते हैं, बाबा इशारा देते हैं, इशारा नहीं देते हैं, बाबा कहते हैं, पर तुम रामानुसार इशारा जरूर मिलता है, क्या होता है, अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती जाती है, और फिर क्या होता है, तो मन के अंदर उलझन पैदा होती रहती है। ऐसे एक्चुअली मैं मुरली का शुरू का पढ़ लू ना ध्यान से, फिर मन तृप्त नहीं होता है, और जो बाबा अतिंद्रिय सुख की अनुभूति है वो तृप्त मन है, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति है ना, आनंद की स्थिति है, कुछ चाहिए नहीं, खाना पीना भी थोड़ा सूक्ष्म में खाना, वो अपने आप ही पेट भर जाता है। दादियां हमारा कितना खाती हैं, एक चपाती हमारे एक टुकड़े के बराबर होती है, वो दादी का एक टुकड़ा होता है, एक चपाती, इतनी दादी खा के बस पूरा हो गया, आधी चपाती खा लेगी, तो जितना जितना हमारी क्या हमारी रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, हमारी माइलेज ऐसे तो माइलेज होती है ना, अभी गाड़ी चलती है ना 10 किलोमीटर एक लीटर पेट्रोल में है ना, फिर क्या होगा, एक लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चलेगी है ना, तो फिर ऐसी गाड़ी बन जाती है हमारी। तो हम अंत में क्या करेंगे, सूक्ष्म खाएंगे, थोड़ा सा एक टुकड़ा भोग लगाया, हम देवताओं कितना चढ़ाते हैं, कितना भोग लगाते हैं, प्रसाद कर लगाते हैं ना, एक बूंदी का दान लगाते हैं ना, ज्यादा खा ले तो क्या करें, हमारा आधा खा जाए तो हम भोग नहीं लगाए भगवान को ना, तो भगवान सूक्ष्म खाते हैं ना, तो हम भी जब हमारे अंदर ऐसे गुण आते जाएंगे, हम सूक्ष्म, जब विनाश का समय आएगा ना, हमें ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं होगी, थोड़ा सा एक चम्मच खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, वही बहुत है ना, अंत में हमको इच्छा नहीं होगी, इतना सा होगा ना आधा किलो, उसमें 500 लोग खाना खा लेंगे, आधा किलो में 500 का पेट भर जाएगा है ना, और सूक्ष्म मतलब खाते रहेंगे, जो भी खाना है ना, आम का रस पीना, ऊपर जाके पिएंगे, डायबिटीज खत्म हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, माइग्रेन खत्म हो जाएगा, हार्ट की बीमारी रहेगी नहीं, कोई अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा ना, बीमारी उसमें दवाई नहीं खानी पड़ेगी, थायराइड की बीमारी खत्म हो जाएगी है ना। तो ऐसी स्थिति जब बनती जाएगी ना हमारी, तो बाबा कहता है इसलिए आप बच्चे विश्व के आधार मुहूर्त हो, अंत में कौन कौन लाइट दिखाएगा, आधार मुहूर्त, उधार मुहूर्त, उदाहरण मुहूर्त, आप उदाहरण मुहूर्त होंगे, आप संपूर्ण, आपके पर कोई इच्छा नहीं होगी, आपके पर लाइन लगी होगी, आप ऐसे ही करके बैठ जाओगे ना, बस ऐसे हाथ भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे देवी देवताओं को दिखा दिया है, ऐसे तो करके ऐसे बैठे रहेंगे, जहां भी बैठे हैं सारे विश्व के आत्मा को अपने आप प्राप्ति होती रहेगी। तो सुना आपने, तो बाबा ने लास्ट में क्या बोला, सभी विश्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले सदा संपन्न तृप्त आत्माओं को विश्व के आधार मुहूर्त, हर समय विश्व कल्याण की श्रेष्ठ कामना में स्थित रहने वाले, विश्व के आगे मास्टर विश्व रक्षक बन सर्व की रक्षा करने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ महान आत्माओं को बाप दादा किनको याद प्यार देता है, ऐसी आत्माओं को ना, तो नशे में रहना चाहिए। तो ये मुरली कितनी बार पढ़नी चाहिए, मतलब एक ही होमवर्क है, एक्चुअली ये मुरली नहीं होमवर्क है, एक हफ्ते का होमवर्क है, अगला शनिवार अगली संडे की मुरली आने तक ये मुरली का स्वरूप बन जाना चाहिए। जैसे आज की सुबह की मुरली थी, वो आज की मुरली आज रात सोने तक वो उसका स्वरूप बन जाना चाहिए। कल मुरली सुनेंगे दोबारा या पढ़ेंगे, उसके पहले होमवर्क पूरा हो जाए ना। तो ऐसी जब लगन लगेगी हमारे अंदर तो हम दिन प्रतिदिन हमारी नवीनता आती जाएगी ना, स्टेज बदलती जाएगी है ना, हम ऊपर उठते जाएंगे, हद की कामनाएं पूरी खत्म होती जाएंगी और तब हम बाप समान बन सकेंगे। नहीं तो हम अपने ही बीच में फंसे रहेंगे, प्रॉब्लम में फंसे, समस्या आएंगी नहीं, हम ऊपर रहेंगे समस्या नीचे रहेंगी, हम ऊपर से उड़ते रहेंगे। फरिश्ते का मतलब ये है जिसकी बुद्धि मन और संस्कार संपूर्ण पावन तत्व पदार्थ बन गए, और बनाने का साधन है मुरली। देवता बनने का साधन, दैवी गुण धारण करने का साधन मुरली है ना। तो ऐसे जब लगन बनाएंगे, ये बाबा और मुरली, बाबा और मुरली बस दो ही सत्य हैं, इसमें कुछ भी मनमत मिक्स नहीं करो, परमत मिक्स नहीं करो। दुनिया की सुनी हुई बातें, दुनिया ने जो कहा, दुनिया वाले कुछ भी कहते हैं, किताबें कुछ भी कहती हैं, अखबार व्हाट्सएप कुछ भी कहते हैं, वो ना सुन करके एक बाबा, मेरे बाबा ने क्या कहा वही करने का। अगर उसके परिवार में जाना है, उसके वंश में आना है तो, नहीं तो किसी और के सुनेंगे ना तो कहां चले जाएंगे, किसी और के वंश में चले जाएंगे है ना। इसलिए मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब ऐसी लगन लगाएंगे, चलिए एक मिनट चलो बाबा को याद करके उठेंगे बहुत प्यार से, और निरंतरता की इंपॉर्टेंस है। सहज योगी, स्वतः योगी, प्रेम संपन्न योगी, प्रेम संपन्न योगी, और फिर क्या बनेंगे, निरंतर योगी। सहज योगी, स्वतः योगी, प्रेम संपन्न योगी और फिर निरंतर योगी। बिना प्रेम के प्रेम माना, मुझे बहुत मजा आता है जब मैं प्रेम का शब्द को सोचता हूं ना, प्रेम माना जो जैसा है उसको दिल से स्वीकार कर लो, कोई बिना किसी शर्त के, विश्व की हर आत्मा को स्वीकार कर लो, यही प्रेम है। ऐसा ही मेरा बाबा करता है, ऐसा ही मुझे करना है, कोई कंडीशन नहीं रखनी है। तो ऐसी प्रेम, बेहद का प्यार, बेहद की स्थिति, यही बाप समान बनने का तरीका है। और उसके लिए चाहिए योग बल। योग बल का मतलब बाप से कंबाइंड स्थिति। जब ऐसी स्थिति होगी तो हम संपूर्ण और संपन्न बन जाएंगे। ओके, ओम शांति।
कुछ भी रहा।